नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अभ्यात्माओं, स्वाध्याय गोमट सार जीव कांड की प्रथम अध्याय को समाप्त करके द्वितीय अध्याय जीव समास प्रकरण में प्रवेश कर लिया था, तो हम उस ओर ही चलते हैं। मंगलाचरण के साथ गोमट सार जीव कांड ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं को कथन करने का उद्देश्य बनाकर आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गाथाओं के माध्यम से प्राकृत भाषा में जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं का कथन करना जो प्रारंभ किया, एक एक अध्याय उसके लिए नियत किए, तो प्रथम अध्याय में आपने 20 प्ररूपणाओं के नाम, गुण स्थान का लक्षण और इसी प्रथम प्ररूपणा रूप गुण स्थान के 14 भेदों का पूरा वर्णन सुना। इस अध्याय के अंत में 14 गुण स्थान इस नाम से पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने सारांश दिया है, जिसके माध्यम से पूरी अध्याय का सार आ जाता है। इसके अंदर संक्षेप और योग ये गुणस्थान के पर्यायवाची नाम और विस्तार तथा आदेश ये मार्गणा के पर्यायवाची नामों का वर्णन किया और मोह तथा योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणामों का नाम गुणस्थान है और अपने अपने कर्म के उदय से होने वाली मार्गणाएं हैं ये वर्णन किया। पुनः गुणस्थान का सामान्य लक्षण बता करके 14 भेदों का संक्षेप में वर्णन किया और इसके अंतर्गत छठे गुण स्थान में प्रमाद के 80 भेद बताए हैं। पुनः आगे 14 गुण स्थान तथा 14 गुण स्थानों से अतीत अवस्था सिद्ध अवस्था का वर्णन करके और इस प्रकरण को संपूर्ण किया है, समापन किया है। और दूसरे अध्याय में आपको हमने जीव समास का प्रारंभीकरण कराया था। जीव समास का मतलब ही बताया गया कि जिनके द्वारा अनेक जीव और उनके अनेक प्रकार की जातियां यानी उनके प्रकार जाने जाएं, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समास कहा है। यानी जीवों के भेद जहां संक्षेप में वर्णन किए गए हैं उस प्ररूपणा का नाम है जीव समास प्ररूपणा। अब हम दूसरी गाथा में आते हैं कि जीव समास के कितने भेद हैं। जीव समास का लक्षण आपको पहली गाथा में बताया और इसके अंदर एक बात और बताई, जीवा समस्यन्ते संक्षिप्यन्ते संग्रह्यन्ते यही धर्मै ते जीव समासा। अर्थात अज्ञेया होने पर भी जिन एकेंद्रियत्व बादरत्व आदि धर्मों के द्वारा संग्रह रूप में अनेकों जीवों और उनकी विविध जातियों का निश्चय हो सके उनको ही जीव समास कहते। अज्ञेया माने वैसे हम लोग नहीं साधारण रूप से जान सकते हैं, आगम के द्वारा ही भेदों को बताया गया कि भाई आपको जानना है एक इंद्री में भी भेद होते हैं, दो इंद्री में भी भेद होते हैं, पंचेंद्रियों में भी भेद होते हैं, तो इसीलिए तो हम लोग संसारी जीवों के प्रकार को जान सके हैं। अब उसी को लेकर कहते हैं कि जीव समास के 14 भेद होते हैं। बादर सुमे इंदिया
बादर सुमे इंदिया
विति चौर इंदिया सन्नी सन्निया
विति चौर इंदिया असन्नी सन्निया
पज्जत्ता पज्जत्ता
पज्जत्ता पज्जत्ता
एवं ते चोद्दशा होती
एवं ते चोद्दशा होती।
सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा।
बादर सुमे इंदिया विचार इंदिया असन्नी सन्निया पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते चोदशा हुन्ति।
बादर सूक्ष्मै केन्द्रिय द्वित्रि चतुरिन्द्रिया संगे संगिनश्च पर्याप्ता पर्याप्ता एवं ते चतुर्दश भवन्ति। चतुर्दश माने 14। कैसे भेद होते हैं 14? तो सबसे पहले एक इंद्रिय जीव के दो भेद कीजिए, बादर और सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव जो दिखते नहीं है, बादर जीव जो दिख जाते हैं आँखों से, नहीं तो सूक्ष्म शीशे से दिख जाते हैं। तो बादर जीवों के, एक इंद्रिय जीवों के दो भेद बताए, बादर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय। उसके बाद विकलत्रय, विकलत्रय माने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, ये विकलत्रय कहलाते हैं। इनके पूर्ण इंद्रिया नहीं है, तो ऐसे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव, तो एक इंद्रिय के दो और विकलत्रय के तीन, कितने हुए? पांच। उसके बाद देखो असन्नी सन्निया, असन्नी सन्नी किसके भेद होते हैं? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के संगी और असंगी, ये दो भेद होते हैं, यानी समनस्क और अमनस्क, मन सहित और मन रहित, ये पंचेंद्रिय के ही दो भेद होते हैं। तो पांच और दो हो गए 7। उसके बाद पज्जत्ता, पज्जत्ता माने पर्याप्ता पर्याप्त, यानी पर्याप्त और अपर्याप्त, ये सातों में पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद होते हैं। पर्याप्त पर्याप्त पहले आप आसुर त्रिभंगी में खूब अच्छे से समझ चुके हैं कि शरीर को बनने योग्य आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियों के योग्य परमाणु जब आ जाते हैं और इनकी पर्याप्तियां जब पूर्ण हो जाती तब आगे का ग्रोथ चालू होता है, इसको पर्याप्ति कहते हैं। और जब तक ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक जीव अपर्याप्त रहता है। तो सातों भेदों में पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं, इसलिए 7 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 14। इस प्रकार से कुल मिलाकर के संक्षेप में जीव समास के 14 भेद हो गए। इसमें टीका के अंदर सामान्य रूप से कहा कि 9 भेद भी होते हैं जीव समास के, 14 भेद वैसे ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। तो उसमें 5 स्थावर के 5 भेद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये स्थावर के 5 भेद हुए, और त्रस के 4 भेद, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो 5 और 4 9 भी होते हैं। और आप बड़ा वाला गोमट सार उठाएंगे तो उसकी टीका में कई प्रकार से, यानी केवल एक जीव समाज भी है, दो जीव समाज भी हैं, तो इस प्रकार से विविध भेदों में भी बताया है कि दो जीव समाज में गुणस्थान और मारणा को खाली ले लें, और 9 भेद में 5 स्थावर और 4 त्रस के ले लिया, इस प्रकार से। और आगे बहुत सारे 12 भेद भी हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोध, इतर निगोध, और प्रत्येक वनस्पति के 2, और उसके बाद त्रस के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ऐसे ऊपर के 12 में मिलाया 2 और फिर 5, तो 19 भेद भी हो गए जीव समास के। हाँ, आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगी, 57 भेद भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में वो जितना गोमट सार में लिखा हुआ है जीव कांड में उतना ही आएगा। तो आपको यहाँ 14 जीव समास जानने हैं। कितने? 14। कैसे? एक इंद्रिय के बादर और सूक्ष्म दो भेद, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, विकलत्रय, तो 3 भेद हुए, विकलत्रय के 3 भेद, तो तो 3 और 2 5 हुए, और पंचेंद्री के संगी और असंगी 2 वेद 7 हो गए, और सातों में पर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए 2 से गुणा करने से 14 जीव समास हो जाते हैं। अब आगे इसमें गाथा नंबर 29 में आकृति योनि के भेद बता रहे हैं। आकृति योनि के भेद मतलब क्या है? योनि, योनि माने जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं, जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। योनि के 2 भेद होते हैं, आकृति योनि और गुण योनि। तो यहाँ आकृति योनि के भेद बता रहे हैं, क्योंकि जीव समास का प्रकरण चल रहा है, प्रत्येक जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे संसार में आते हैं, तो वही जन्म लेने के स्थान को योनि कहा है। तो आकृति योनि कि किस योनि से कौन जन्म लेते हैं, उनके आकार क्या है, उसको बताते हैं।
संखावत जोणी
कुमुन्नय वंशपत जोणिया,
कुमुन्नय वंशपत जोणिया,
तथय
संखावते
नियमादु विभज्यते गभो,
नियमादु विभज्यते गभो।
सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा।
संखावत जोणी कुमुन्नय वंशपत जोणिया, तथय संखावते नियमादु विभज्यते गभो।
यानी कि आकृति योनि के 3 भेद हैं। संखावत्ते जोनी संखावर्तक योनि, कूर्मोन्नत वंशपत्र योनि च, तत्र च संखावर्ते नियमात्तु विभज्यते गर्भा। संखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि, इस प्रकार से इन जन्म लेने के 3 स्थान रूप योनियों के 3 भेद होते हैं। उसमें कहा कि शंखावर्त योनि माने इसमें शंखावर्त योनि जो है उसमें नियम से गर्भ वर्जित है, यानी इनके गर्भ नहीं रहता, तो जन्म ये नहीं दे सकती हैं। कहते हैं कि चक्रवर्ती की पट्ट रानी कि शंखावर्ती योनि होती है, तो आप ये जानना कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में जो पट रानी होती हैं, वे किसी संतान को जन्म नहीं देती हैं। तो इस प्रकार से शंखावर्ती योनि के लिए वर्जित किया है। तो शंखावर्ती योनि का मतलब बताया है कि जिसके अंदर शंख के समान चक्र पड़े हों, उसको शंखावर्ती योनि कहते हैं। और कुर्मोन्नत योनि माने कुर माने होता कछुआ, कछुए की पीठ की तरह उठी हुई हो जो, उसको कुर्मोन्नत योनि कहते हैं। और जो बांस के पत्ते के समान लंबी हो, उसे वंशपत्र योनि कहते हैं। ये 3 तरह की आकार योनि है। इनमें से पहली जो शंखावर्त योनि है, उसमें नियम से गर्भ नहीं रहता। ये कुछ नियम ही होते हैं। तो कर्णान योग के इस ग्रंथ के माध्यम से आपको जीव समास का जो वर्णन बताया जा रहा है, अभी इसमें आगे और आएंगे कि समूर्छन जन्म वगैरह, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जन्म लेने के स्थान स्वरूप योनि के 3 भेद कर दिए। तो अब ये सब भेद आपको ध्यान में रखना है, और उसके पश्चात आपको आगे जन्म लेने के स्थान के मनुष्य, आज के जो मनुष्य हैं, वे किस प्रकार से जन्म लेते हैं और उनकी कौन सी योनि से उनका जन्म हुआ करता है, ये जानने के लिए आपको कल की क्लास में भाग लेना है। गोमट सार जीव कांड सार के साथ साथ में आप